آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
पिछले एक साल में कोरोना महामारी के कारण हमारे जीवन में काफी बदलाव आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर हमारे टैक्स रिटर्न भरने के तरीके पर भी पड़ा है। इसलिए आपको पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 की टैक्स रिटर्न भरते समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस यानी ETO का मानना है कि कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम किया है, वह बिजली, इंटरनेट, फोन इत्यादि से जुड़े खर्चों को अपनी सालाना टैक्स रिटर्न में डिडक्शन के तौर पर शामिल करेंगे। स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग केन डिवोस बताते हैं कि घर पर काम करने से जुड़े खर्चों को क्लेम करने के लिए कई तरीके हैं। इसमें सबसे सरल तरीका है टेम्परेरी शॉर्टकट मेथड। इस तरीके के अनुसार आप अपने कार्य से जुड़े आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को 80 सेंट्स प्रति घंटे के हिसाब से अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं।
Basically, what this saves is a lot of paperwork. What you need to do is to keep a record of the number of hours that you actually did work at home during the week. So, in a typical week, someone who was working from home, for example, for the whole year, you know, 40 hours a week, 48 weeks of the year, that would be a straight-out standard claim of approximately $1,500, which is very simple to work out.
यह तरीका हालांकि सभी खर्चों को तो शामिल करता है, पर जरूरी नहीं कि यह तरीका सभी टैक्स पेयर्स को पसंद आए। दूसरा तरीका है 52 सेंट्स रेट मेथड। यह 80 सेंट रेट मेथड का एक विकल्प है। फर्क इतना है कि इस तरीके के तहत आप सिर्फ बिजली, गैस और ऑफिस फर्नीचर की मरम्मत पर वहन की गई राशि को ही टैक्स डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके के मुताबिक आपको मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और स्टेशनरी से जुड़े खर्चों को टैक्स रिटर्न में अलग से शामिल करना होगा। अगर आपको 52 सेंट रेट मेथड और 80 सेंट रेट मेथड थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आपके पास एक और विकल्प है। इस तीसरे और आखिरी विकल्प को एक्चुअल एक्सपेंसेस मेथड कहते हैं। इस विकल्प के प्रयोग के लिए आपको हर खरीद फरोख्त के साथ साथ सभी मरम्मत से जुड़े दस्तावेजों को संभाल के रखना होगा। प्रोफेसर डिवोस कहते हैं कि समझदारी तो इसी में है कि आप उसी विकल्प का उपयोग करें जिससे आपको सर्वाधिक लाभ हो।
Actual expenses method says you do calculate everything separately. You keep the actual expenses that you've incurred throughout the year, and in addition to that, you include your depreciation calculation. So it has the potential to be a larger figure. Whereas the set rate of 80 cents, the shortcut method, you cannot then go and claim depreciation on top of that.
Professor DeVos कहते हैं कि taxpayer को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में होम ऑफिस से जुड़े एक्सपेंसेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन बाकी खर्चों में हो सकता है कि कमी आई हो।
Obviously, working from home means that people haven't been traveling, they haven't been using their cars as much as they would normally be the case. So therefore, the ATO will be looking very closely at their car and travel expenses. So you need to be careful there.
ATO के असिस्टेंट कमिश्नर टिम लो कहते हैं कि उनके अनुभव में टैक्सपेयर्स सभी प्रकार के खर्चों को वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंसेस के तौर पर क्लेम करने की कोशिश करते हैं।
Whilst your employer might provide the coffee, tea and biscuits at work, if you incur that expense at home, it isn't a deductible expense. Other costs that we see people make as a mistake in their tax return relate to costs associated with their child's education. So costs for setting up because they've been homeschooled aren't deductible as an expense because they're not directly related to earning your income. Another expense that we often see people try and claim when they're working from home is occupancy costs. If you're working from home, generally speaking, you can't claim occupancy costs such as rent and mortgage interest.
Professor DeVos कहते हैं कि सरकारी नियम के अनुसार आप उन्हीं सामान पर deductions claim कर सकते हैं जिन्हें आपने अपनी आमदनी को जारी रखने के लिए खरीदा है और इसका भुगतान आपके office या employer ने नहीं किया है।
A lot of people got more time now at home, and they're spending that time taking up courses, doing study. You've got to be careful. You cannot claim these particular courses as a deduction if they're not related to your current work. You know, so those cooking courses and those elaborate craft courses that some people like to do, as exciting as they may be, unfortunately, they're probably not related to your main occupation.
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार ईटीओ उन सभी 6 लाख लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है जिन्होंने बीते वर्षों में क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन में निवेश किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईटीओ ने 1 लाख से अधिक लोगों को पत्र लिखकर यह याद दिलाया है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी से हुए लाभ पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी चुकाना है। ईटीओ के असिस्टेंट कमिश्नर लो ने बताया कि ऐसा करना क्यों जरूरी है।
Cryptocurrency is like an investment asset, so it's kind of like shares, and so the similar tax obligations apply to cryptocurrency like it applies to shares. So if you sell, swap or exchange cryptocurrency, there will be a taxable transaction and you are required to include that in your tax return.
Assistant Commissioner Lo ne kaha ki ATO un sabhi logon ki sahayata karne ko taiyar hai jo cryptocurrency ki value mein tezi se hone wale utar chadhav और विभिन्न एक्सचेंज रेट्स को लेकर चिंतित हैं।
We do expect though, taxpayers do keep good records. Now, in any event, we've got information through data matching protocols, which allows us to get information from crypto exchanges, which we can use to data match against taxpayers.
प्रोफेसर डिवोस कहते हैं कि अगर कोरोना महामारी के दौरान आपने कुछ अतिरिक्त कार्य या किसी और ओहदे पर काम किया है, तो इसे टैक्स रिटर्न में शामिल करना ना भूलें।
People can't segregate these particular jobs from their main job. I mean, these are second jobs which are generating income, which potentially, of course, is assessable income which you must pay tax on.
साथ ही अगर आपको कोरोना महामारी के दौरान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, तो उसे भी आप अपनी टैक्स रिटर्न में शामिल करना ना भूलें। आपको यह भी याद दिला दें कि टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कोई फेरतबल नहीं किया गया है। हमेशा की तरह जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न खुद से भरते हैं, तो उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। अगर आप किसी टैक्स एजेंट की सहायता लेने का विचार कर रहे हैं, तो आपको अक्टूबर अंत से पहले ही टैक्स एजेंट से संपर्क साधना होगा। टैक्स विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप अगस्त से पहले अपनी टैक्स रिटर्न सरकार को भेजते हैं, तो हो सकता है कि आपका टैक्स रिफंड प्रोसेस होने में कुछ समय लग जाए। कमिश्नर लो इस विलंब का कारण समझाते हुए कहते हैं,
By the end of July, information from employers, banks, health funds, government agencies and more will automatically be added to your tax return. If you want to lodge earlier, you must take care to manually add all your income.
प्रोफेसर केन डिवोस कहते हैं कि टैक्स एजेंट की मदद लेने का निर्णय हर व्यक्ति की मौजूदा हालात पर निर्भर करता है।
There's a number of reasons why people go to tax agents. I mean, mainly it's due to the fact that their circumstances are a little bit complex. Maybe it does involve property. Maybe it does have capital gains and losses. If you do have income coming in from overseas, you know, you may have tax obligations there as an Australian resident on all your worldwide income, and that includes worldwide assets. So basically, if your tax return is getting a little bit complicated in those respects, it's probably good advice to go to a tax practitioner and get professional advice.
आप टैक्स एजेंट को चुकाई गई फीस को अपने अगले साल की टैक्स रिटर्न में क्लेम भी कर सकते हैं। ATO कम आमदनी वाले व्यक्तियों की टैक्स रिटर्न भरने में मुफ्त सहायता भी प्रदान करता है। रिटायर्ड अकाउंटेंट करुणा चिना एक ATO टैक्स हेल्प वॉलंटियर हैं। उनका कहना है कि
बेसिकली somebody who wishes to do their tax and they're earning around $60,000 or less can make an appointment to see me at the multicultural center. And they will be given a time slot to come and consult me during those predetermined date and time.
वे कहते हैं कि ATO और उनके volunteer साथी सभी गैर अंग्रेजी भाषी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं।
We call the translation and interpretation service and get them to connect to the tax office so that the tax office can then interview them and provide like tax file number and so on to get the lodgement process going. And those interpreters will also sometimes help me communicate with the client.
SBS News से Amy Hall की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए पेश किया है साहिल मक्कड़ ने।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।